I hope we have all been blessed by this camp.
मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इस कैंप से आशीषित हुए हैं.
I know I've been mightily blessed.
मैं खुद बहुत ही अधिक आशीषित हुआ हूं इस कैंप के द्वारा.
Many, you can say amen to that.
कितने लोग आमीन बोल सकते हैं हाथ ऊपर करके.
Praise the Lord.
प्रभु की महिमा हो.
And we have heard some wonderful things.
हमने कुछ अद्भुत चीजें सुनी हैं.
And we began in Isaiah 51.
हमने Isaiah का 51 से पढ़ना चालू किया था.
That was what God spoke to us on the first day.
वही चीज है जो प्रभु ने पहले दिन हमसे बात किया था.
Listen to me.
मुझको सुनिए.
Not to me. Listen to God.
मेरे मनुष्य को नहीं परमेश्वर को देखो.
You who pursue righteousness, जो seek the Lord.
जो धार्मिकता के पीछे जाते हैं और जो प्रभु को खोजी होते हैं.
And we looked through the pit from which we were pulled out from.
हम जिस गड्ढे से प्रभु ने हमें निकाला है उसको हम देखेंगे.
And we also remember what we have received to keep it and repent.
हम उन चीजों को जो हमें मिली है उसके विषय में सोचेंगे और पश्चाताप करके लौटेंगे.
Remember that we were without hope and without God in the world.
हम बिना विश्वास और आशा के इस दुनिया में थे.
But God being rich in mercy found you and me.
परंतु प्रभु जो कृपा में बड़ा है वो उसने हमको ढूंढा.
We also see, saw what God said to the leader of the church in Ephesus.
हमने कलिस एफिसस की कलिसिया के मुखिया से प्रभु ने क्या बातें की उसके विषय में हमने सुना.
I don't know whether there were some, sorry, there were some who the Lord had to say, I have something against you.
और ऐसे कुछ लोग थे जिसके विषय में प्रभु को बोलना था आपके विरोध में मुझे कुछ कहना है.
You have left your first love.
आपने आपका पहलौटा प्रेम छोड़ दिया है.
And even if we say no, I have not left my first love. I love the Lord like I did in the beginning.
अगर अभी भी हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने मेरा पहलौटा प्रेम नहीं छोड़ा है, पहले जैसे प्रेम किया वैसे ही मैं आज भी करता हूँ.
I hope we've been challenged to love Him more.
मैं विश्वास करता हूं कि इस कैंप के द्वारा आप और भी प्रोत्साहित हुए हैं उस प्रेम में बढ़ने के लिए.
To love him with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength.
हमारे शक्ति बल और आग्रह के साथ प्रभु को हम और भी प्रेम करेंगे.
And we saw last night that God wants to do something new.
हमने कल रात को देखा कि प्रभु कुछ नया चीज हमारे जीवन में करना चाहता है.
That's a promise I want to leave with us.
यही आशा मैं आपके यहाँ छोड़ के जाना चाहता हूँ.
As we go back to our homes,
जब हम हमारे घरों को वापस लौट के जाएंगे,
Isaiah 42,
Isaiah का 42 में हम जाएंगे.
Verse 9,
नौवा वचन.
We read the same thing in Isaiah 43:19 last night.
हमने कल पढ़ा था Isaiah 43 के 19 में. अब हम पढ़ रहे हैं 42 में पढ़ रहे हैं.
But I want you to read this Isaiah 42 verse 9 in context of the previous verses.
मैं निवेदन करूंगा कि 42 का 9 जब हम पढ़ेंगे तो किस के पश्चातल में वो बता रहे हैं उसके विषय में हम सोचेंगे.
This is what the Lord says.
ये प्रभु हमसे बोल रहा है.
You go back in verse 6.
छठवें वचन को हम पहले पढ़ेंगे.
So I am the Lord, I have called you in righteousness.
मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है. मैं तेरा हाथ.
I will also hold you by the hand and watch over you.
मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा.
And I will appoint you as a covenant to the people, as a light to the nations, to open blind eyes, to bring out prisoners from the dungeon. And those who dwell in darkness from the prison.
मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं की बंदी गृह से निकाले और जो अंधकार में बैठे हैं उनको काल कोटरी से निकाले.
And verse 8, I am the Lord, that is my name, I will not give my glory to another, nor my praise to graven images.
मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा।
एंड द लॉर्ड सेज इन वर्स 9, बिहोल्ड द फॉर्मर थिंग्स हैव कम टू पास, नाउ आई डिक्लेयर न्यू थिंग्स, बिफोर दे स्प्रिंग फोर्थ आई प्रोक्लेम देम टू यू।
देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं।
इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच वी लुक्ड अ बिट एट लास्ट नाइट इन वर्स 18 ही सेज डू नॉट कॉल टू माइंड द फॉर्मर थिंग्स।
और अगले चैप्टर में हम देखते हैं जिसके विषय में हमने पढ़ा 18 में कि जो पुरानी चीजें हैं उसको हम याद में नहीं लेके आएंगे।
वी स्टार्टेड दिस कैंप इन थिंकिंग बैक,
हमने ये कैंप का शुरुआत किया था पुराने चीजों को याद करते हुए,
रोलिंग बैक द कर्टन ऑफ आवर मेमोरी नाउ एंड देन,
हमारे याद के वो पर्दे को खोलते हुए हम पीछे जाके देख रहे थे,
शो मी वेयर यू ब्रॉट मी फ्रॉम एंड वेयर
प्रभु आई कुड हैव बीन, प्रभु मैं आपने मुझे कहां से निकाला और मुझे कहां पहुंचाया है।
रिमाइंड मी डियर लॉर्ड, दैट वाज हाउ We began.
हमने ऐसे ही शुरुआत किया था, प्रभु मुझे याद दिलाइए वे चीजें।
And it was good that we look back and see where God brought us from.
और ये अच्छी चीज है कि हम ये याद करें कि प्रभु ने हमें कहाँ से बुलाया है।
And where I could have been if He left me in that situation.
और अगर प्रभु ने मुझे उस अवस्था में छोड़ दिया होता तो मेरा क्या स्थिति रहता?
And we also saw where I should have been.
और हमने यह भी देखा कि मुझे कहां पहुंचना चाहिए था।
That we have lost progress.
और हमारा जो प्रगति है वो रुक गया था।
Maybe we have stagnated.
शायद हम वहां स्थिर हो गए।
There's a word in Zephaniah.
ज़ेफ़नायाह में एक ऐसा वचन है।
And the Lord says here in Zephaniah, turn backwards from Malachi. And then go back, Zechariah, Haggai, and then Zephaniah. In verse 12 of chapter 1, you know, as I said last night, these are the prophets of the last times. It's just towards the end of the old covenant. God calls all of them. All of them, God calls His people to repentance, but they did not repent.
ये आखरी के पुराने नियम के जो आखरी नबी थे, वे सभी लोगों ने एक ही प्रचार किया कि लोगों को पश्चाताप की ओर लेके गया.
And it begins in chapter 1 and verse 2. It says, "I will completely remove all things from the face of the earth," declares the Lord. "I'll remove man and beast. I will remove the birds of the sky and the fish of the sea," so on.
पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु पूरी रीति से नया करना चाहता है।
And it says in verse 7, "Be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near."
सातवें वचन में ऐसे बोला है कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है।
And many times we read that the day of the Lord.
वहां लिखा हुआ है यहोवा का दिन।
The day of the Lord is the coming judgment upon this world.
यहोवा का दिन प्रभु का न्याय का दिन है।
In all ungodly, in all unbelievers.
सारे अविश्वासी और जो प्रभु का भय नहीं मानते हैं उनके विषय में।
And we want to live in such a way that we are not there.
हमें इस प्रकार से जीना है कि हम उनके बीच में ना रह जाएं।
And the Lord says there,
और प्रभु इस प्रकार,
verse 12, it'll come about at that time that I will search Jerusalem, that is the church, with lamps, and I will punish the men and women who are stagnant in spirit.
उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ करूंगा और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ने तो भला करेगा न बुरा, उसको मैं दंड दूंगा।
In verse 14 it says, "Near is the great day of the Lord, near and coming very quickly. Listen, the day of the Lord."
यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग ही समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है।
A day of wrath is that day, verse 15. A day of trouble and distress, a day of destruction and desolation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness.
वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेत का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन रहेगा।
Because they have sinned against the Lord.
क्योंकि वे परमेश्वर के विरोध में पाप किए हैं।
Who have sinned?
किसने पाप किया है?
It's not talking about people outside the world.
ये दुनिया के बाहर के लोगों के बात विषय में नहीं बात कर रहे हैं।
Not talking about people outside the church.
कलीसिया के बाहर के लोगों के बारे में नहीं बात हो रहा।
God's people.
प्रभु के लोग।
And this is what these prophets were calling God's people right up to Malachi before the time of darkness before Jesus came. 400+ years.
अंधकार के दिन प्रभु यीशु के आने से पहले वो सारे पुराने नियम के जो आखिरी के नबी थे वो यही अंधकार के विषय में बात कर रहे थे।
We are living in such days.
हम ऐसे दिनों में आज भी जी रहे हैं।
We have come to the end of time.
हमें वो समय का अंत तक हम पहुंच चुके हैं।
We don't want to be there for this day of the Lord.
हमें उस अंत के प्रभु के न्याय के दिन तक रहने की जरूरत नहीं है।
God says many things here.
प्रभु कई चीजें यहाँ बताते हैं।
He says here, if you look in Zephaniah in chapter 3,
Zephaniah के तीसरे अध्याय में हम देखेंगे।
This is the word the Lord gave us right in the beginning of the church in Bangalore.
बेंगलोर का कलीसिया के शुरुआत के दिनों में प्रभु ने यही चीज हमसे बताया था।
And many times through the years.
और साल कई सालों में बीच बीच में ये वचन हमको बार बार याद दिलाया।
It says in verse 8, therefore wait for me, declares the Lord, for the day when I rise up as a witness, indeed my decision is to gather nations, to assemble kingdoms, so on. It says, and then it says in verse 9, then I will give to the peoples purified lips that all of them may call on the name of the Lord to serve him with one shoulder. Verse 9.
और उस समय मैं देश देश में लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें।
And verse 10, God says, from beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, my dispersed ones will bring my offerings. Verse 3:10.
मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरा भेंट बनकर आएगी।
These are the true worshippers.
यही सच्चे आराधक हैं।
Who worship God in spirit and in truth.
जो उसकी आराधना करते हैं सच्चाई और सच्चाई से।
Jesus said, "They who worship God worship Him in spirit and truth."
जो प्रभु यीशु ने बोला कि जो आराधना करते हैं उसकी वो सच्चाई आत्मा और सच्चाई के साथ वो आराधना करेंगे।
In spirit and in truth.
आत्मा और सच्चाई के साथ।
That is how we worship God.
इसी प्रकार से हम प्रभु की आराधना करते हैं।
I'm not saying we can't sing.
मैं ये नहीं बोलता कि हम गाना नहीं गा सकते।
We can't praise God.
हम आराधना नहीं कर सकते। स्तुति नहीं कर सकते।
That is praise.
वो स्तुति है।
That's thanksgiving.
वो है धन्यवाद देना।
But worship.
परंतु आराधना।
That woman wanted to know, where should we worship? Here in Jerusalem or there in the mountain of Samaria?
वो स्त्री को यह मालूम करना था कि आराधना कहाँ करता है, यहाँ कर कि वो समरिया में वो पहाड़ पर।
And he had to tell her, woman, you don't know what is worship.
तो तब प्रभु ने उस स्त्री को बोलना पड़ा, आपको आराधना क्या है ये नहीं मालूम।
It's neither here nor there.
इसका मतलब है ना यहाँ ना वहाँ।
We worship God in spirit and in truth.
हम आराधना करते हैं सच्चाई और आत्मा में।
Why do I say this?
ये मैं क्यों बता रहा हूँ?
Young people today are taken up with all that is what is called worship.
हमारे नवयुवक सब लोग इससे बहुत उत्सुक रहते हैं आज के दिन में जो आराधना करके बोला जाता है।
We've heard that so often in the church.
हमने इसके विषय में कलीसिया में कई बार सुना
है। That is not worship.
वो आराधना नहीं है।
That's praise, that's thanksgiving.
वो स्तुति है, धन्यवाद करना।
And even though you may get a very nice feeling.
शायद आपके मन में बहुत अच्छा लगता हो जब ऐसे हम करते हैं.
That is not worship.
वो कुछ आराधना नहीं है.
God says, I'll bring my true worshippers.
मैं सच्चे आराधकों को लेके आऊंगा.
Who are these true worshippers?
वो सच्चे आराधक कौन हैं?
True worship is
सही आराधना है.
Is where we are just conscious only of God.
जहां हमें केवल प्रभु की सानिधि ही हमारे सामने है.
Oh, I is so blessed. Those times.
वो कितने आशीषित समय हैं.
No words.
कोई वचन नहीं.
No thanks.
कोई धन्यवाद नहीं.
No praise.
कोई स्तुति नहीं.
Just taken up with God Himself.
केवल प्रभु के साथ लगे हुए हैं.
Silence.
शांति.
God says many times. The Holy Spirit says many times. Be silent before God.
कई बार पवित्र शास्त्र ऐसे बोलता है कि प्रभु के सामने आप शांत रहो.
You try it.
आप प्रयास कीजिए एक बार.
See what it does to your spirit.
वो क्या आपके आत्मा में करेगा देखिए.
That you can worship God.
कि आप आराधना कर सकते हो.
In spirit and in truth.
और आत्मा और सच्चाई के साथ.
And Paul says in Romans 12.
और पौलुस बोलता है रोमियो 12 में.
I beseech you, brethren, I beg of you, in view of all the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, which is true. Spiritual worship.
रोमियो 12 में
12:1.
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इंग्लिश बाइबल में आराधना लिखा हुआ है.
ट्रू स्पिरिचुअल वर्शिप.
सही आत्मिक आराधना.
ऑफर माय बॉडी टू गॉड.
जहां मैं मेरे शरीर को प्रभु को अर्पित करता हूं.
एंड इफ आई एम नॉट गिविंग माय बॉडी.
अगर मैं मेरा शरीर प्रभु को नहीं देता हूं.
एवरीथिंग एल्स दैट आई मे कॉल वर्शिप इज नॉट वर्शिप.
मैं बाकी जो भी कुछ करता हूं वो आराधना नहीं है.
सो गॉड सेज हियर थ्रू ज़ेफनिया, आई एम गोइंग टू ब्रिंग माय ट्रू वर्शिपर्स टुगेदर.
प्रभु यहां ज़ेफनिया बोलते हैं मैं मेरे सच्चे आराधकों को लेके आऊंगा.
एंड हु आर दीस.
वे कौन हैं?
लिसन टू इट.
यहां देखिए सुनिए.
ही सेज फॉर देन I will remove from your midst your proud, exulting ones, and you will never again be haughty on my holy mountain. Zephaniah 3:11.
उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी फिर लज्जित ना होगी. उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी.
And verse 12 it says, But I will leave among you a humble and lowly people and they will take refuge in the name of the Lord.
क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा छोड़ूंगा और वे यहोवा का नाम की शरण लेंगे.
We seen God do that many times in the church in Bangalore.
हमने बंगलोर के कलीसिया में ये प्रभु कई बार करते हुए देखा है.
God removes the proud exulting ones.
प्रभु कई ऐसे अहंकारियों को निकाल देते हैं.
And he leaves a humble and lowly people who take refuge in the name of the Lord.
और वो उन लोगों को छोड़ देते हैं जो दीन और कंगाल हैं.
Not refuge in CFC.
CFC में आभारी होकर नहीं.
Not refuge in Brother Zach.
भाई जैक के आभारी होकर नहीं.
Thank God for CFC.
CFC के लिए धन्यवाद.
Thank God for a brother like Brother Zach.
भाई जैक जैसे भाई के लिए धन्यवाद.
They will take refuge in the name of the Lord.
वे शरण लेंगे प्रभु के नाम पर.
This is the character of these people.
यही उनके गुण हैं.
True worshippers.
सही आराधक.
The remnant of Israel.
जो बचे हुए लोग हैं इज़राइल के.
Will do no wrong.
वो कभी गलत नहीं काम करेंगे.
Tell no lies.
वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे.
Tell no lies.
कोई झूठ नहीं बोलते हैं.
How can we worship God if we are telling lies?
हम कैसे आराधना कर सकते हैं अगर हम झूठ बोले तो?
That itself is a lie.
वो खुद ही एक झूठ है.
I say I'm worshiping God.
हम बोलते हैं हम आराधना कर रहे हैं.
That's a lie.
वो एक झूठ है.
It says, "No will a deceitful tongue be found in their mouths."
और झूठा वचन उनके मुंह में नहीं रहेगा.
They will feed and lie down with no one to make them tremble.
और वे आराम से सोएंगे बिना कोई उनको तकलीफ दिए हुए.
And we saw in one meeting that how God rejoices over such people.
और हमने एक मीटिंग में देखा कि किस प्रकार ऐसे लोगों पर प्रभु कितने खुश होते हैं, आनंदित होते हैं.
He brings a choir to sing over such people.
वो एक ऐसे गाना का मंडल उनके बीच में लेकर आता है उनको खुशी करने के लिए.
We saw in verse 17, he says, "The Lord your God is in your midst."
प्रभु यहोवा आपके बीच में है.
We don't have to whip up worship.
हमें आराधना के रीति में जोर जोर से आवाज करने की जरूरत नहीं है.
God says, "I will be there in your midst."
मैं आपके बीच में रहूंगा, ऐसे परमेश्वर बोलते हैं.
A victorious warrior.
एक जयवंत योद्धा.
I was saying to many of you in between the sessions that God will is so jealous, He will protect you.
मैं भाइयों के बीच में मीटिंग के बीच में भाइयों से बात करते बोल रहा था कि प्रभु आपकी रक्षा करेगा.
I don't have to fear.
मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है.
Because God says he who touches you, क्योंकि touches the apple of my eye.
क्योंकि प्रभु बोलता है जो तुझे छुएगा तेरे आंख की पुतली को छूने के समान है.
In the Message Bible it says he who messes with you sticks his finger into my eye.
मैसेज परिभाषा में इस रीति से बोला गया है कि जो तुमको तकलीफ देता है वो उस प्रकार है जो अपना हाथ आपके आंखों के अंदर घुसेड़ रहा है.
That's how much we mean to God.
हम उतने प्रभु के आंखों के सामने मूल्यवान हैं.
We saw that last night.
ये हमने कल भी देखा.
God says, "You're precious to me."
आप बहुत मूल्यवान हो.
I'll trade off the whole world to get you.
मैंने पूरा दुनिया बेच दूंगा आपको खरीदने के लिए.
Do we believe that?
क्या आप ये विश्वास करते हो?
Do you believe that I'm precious to God?
क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु के लिए आप इतने मूल्यवान हो?
That he'll watch over me.
कि वो आपका ख्याल करेगा.
That he will keep me from harm.
वो आपको सारे दुष्टता से बचाएगा.
That I'm able to trust him to keep me from stumbling.
ताकि वो मैं ये आशा में रहूंगा कि वो मुझे गिरने से बचाएगा.
Leave aside falling.
गिरना छोड़ दो.
From stumbling.
लुढ़कने से भी मुझे बचाएगा.
That's what Jude says.
यही जूदा का पत्री
बताता है. He's able to keep you from stumbling.
आपको गिरने से लुढ़कने से बचाएगा.
And present you faultless before his presence with great joy.
और आपको पूरे नीतिमत्व से खड़ा करने के लिए वो योग्य है.
I want you to go from this camp with that confidence in God.
मैं चाहता हूं कि आप ये कैंप छोड़ के जाओगे तो वो धैर्य के साथ यहां से निकल के जाओगे.
Go back to your work spot. Go back to your home. With confidence.
आपके काम के जगह पर आपके घर में आप धैर्य के साथ जाइए.
That you have met God, a victorious warrior.
आपने परमेश्वर से मिले हैं जो एक जयवंत योद्धा है.
Who rejoices over you with great joy.
जो आपके ऊपर अधिक खुशी के खुशी मनाता है.
Not just that.
ये केवल इतना ही नहीं.
He silently plans for you in love.
वो आपके लिए गुप्त में आपका भलाई सोच रहा है.
That is what God will do for every one of us who have had ears to hear Prabhu, what the Spirit is saying to the church.
प्रभु यही चीज हम सबों को बताना चाहता है जिनके पास एक कान है जो आत्मा आपसे बोल रही है.
And with that confidence that I can go back and be available for God to use me like we read just now, turn back to Isaiah 42.
ये धैर्य जो प्रभु हमें दे रहा है उसके साथ हम जाएंगे ताकि प्रभु जो कार्य हमारे द्वारा करना चाहता है जो हम पढ़ेंगे.
You may not travel, I may not travel.
शायद हम अधिक यात्रा ना करें, शायद मैं यात्रा ना करें.
God has not called us for that.
शायद हम प्रभु ने हमें उसके लिए ना बुलाया हो.
But you can be a light.
परंतु आप एक ज्योति होकर जी सकते हो.
In the night we are so thankful for brother Kumar who is our light bearer and we had one little light bearer also to keep us from stumbling going up to our room going down to our room.
हम अधिक धन्यवाद देते हैं भाई कुमार के लिए जो हमको एक दीप लेके मतलब एक टॉर्च लेके हमको हमें आने जाने में मदद कर रहे थे.
Thank God for those who can give us light.
हम धन्यवाद देते हैं उन सबों के लिए जो हमको ज्योति देते हैं, प्रकाश देते हैं।
We can light up the path.
वो हमारे रास्तों को उज्जवलित करते हैं।
I am immensely thankful.
मैं उसके लिए अधिक ही धन्यवादित हूँ।
In this past week, I got such light and revelation that put everything in the right perspective.
पिछले हफ्तों में मुझे ऐसे प्रकाश मिला जो मेरे जीवन के रीति को सही रीति में लेके गया।
So that is why we need one another.
इसीलिए हमें एक दूसरों की जरूरत है।
We can get light from each other.
हमको आपस में मिलकर वो प्रकाश मिलता है।
If I am humble enough to receive.
अगर मैं दीन होकर वो प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ।
I had to say to one brother, forget your questions.
एक भाई को मेरे को इस प्रकार बोलना पड़ा, तेरा प्रश्न तू भूल जा,
into rest.
अब तू शांति में आ जा,
All your questions will cease.
आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे।
You're worried about the Sabbath.
आप शब्बत के विषय में सोच रहे हो।
There's a Sabbath rest for the people of God in Hebrews 4 it says.
इब्रानियों के चौथे अध्याय में एक शब्बत का शांति के विषय में हम वहां पढ़ते हैं।
I was saying to him, what is that rest?
वो शांति कौन सी है?
That I can enter into rest and cease from my own works. As God did from His.
जैसे प्रभु अपने कामों से हटकर शांति में गया, वैसे ही हम भी हमारे कामों से हटकर शांति की ओर जा सकते हैं।
That is a perpetual Sabbath.
ये हमेशा का एक शब्बत है।
I'm not bothered whether seven day, every day is a Sabbath for me.
मैं एक दिन नहीं, परंतु हर एक दिन हफ्ते का वो मेरे लिए शब्बत है।
Every moment, every trial, I can enter. Into rest.
हर एक अवस्था में, हर एक क्षण में मैं उस शांति में मैं जी सकता हूँ।
So we can get occupied with all these questions and controversies.
हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न और उलझन में फंस सकते हैं।
Don't waste your time.
उसमें आप अपना समय बर्बाद न करें।
One godly man said, "We walked with the Lord for 60 years." Run away from controversy and discussion like you would run away from hellfire.
और एक ऐसे 60 साल से प्रभु को जानने वाले दास ने इस प्रकार बोला कि जैसे नरक के आग से आप भाग निकलते हो, वैसे ही ऐसे बातें और प्रश्नों से आप भी भाग निकलो।
So the Lord says here in verse 6 of Isaiah 42.
Isaiah 42 के छठवें वचन में ऐसे लिखा,
I am the Lord, I have called you in righteousness.
मैं आपको बुलाया हूँ नीतिमत्तों में।
I will also hold you by the hand and watch over you.
मैं तुम्हारा हाथ थामे हुआ हूँ और आपके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ।
I'll appoint you as a covenant to the people.
मैंने एक वाचा बांधा है तुमको इन लोगों के सामने।
As a light to the nations.
ताकि इस देश के लिए एक ज्योति बन सको।
Wherever God takes you or puts you. You can be a light there.
प्रभु जहां भी आपको लेके जाता हो वहां आपको एक प्रकाश के रूप में रख सकता है।
There's a proverb that says, you know, don't curse the darkness, light a candle.
एक नीति वचन ऐसे बोला जाता है कि अंधेरे को आप शाप न दो, परंतु एक एक छोटा सा कैंडल जलाओ।
All around us, people are cursing the darkness.
सब बाहर जो है वो अंधकार को शाप दे रहे हैं।
They're cursing the ones who deceive God's people.
और वे उन पे शापित कर रहे हैं जो लोगों को भटका देते हैं।
I don't waste my time anymore.
मैं उन चीजों में मेरा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा।
If I have to warn, as one who has responsibility, we warn people and we tell them, don't go there, don't listen to this.
मेरे को उत्तरदायित्व है, उस कारणवश मैं मेरे लोगों को मैं ये चीजें जताता हूँ कि ऐसे जगह मत जाओ, ऐसी चीजें मत बोलो।
Most of us.
हम में से अधिक
लोग, we don't have responsibility.
आपके पास ऐसे उत्तरदायित्व नहीं है।
We can light a candle.
आप एक ज्योति जला सकते हो।
We can, what we have received,
हमने
we
जो,
can share with others.
हमने जो पाया है वो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं।
We can help open blind eyes, verse 7.
हम आंखें खोल सकते हैं जिनकी आंखें बंद हैं।
We can bring out prisoners from the dungeon.
हम कारागृह में पड़े हुए लोगों को उसमें से हम निकाल कर बाहर लेके आ सकते हैं।
Is it only for the elders?
क्या ये केवल मुखिया लोगों के लिए है?
Is it only just brother Zach?
क्या ये केवल भाई जैक के लिए?
Every one of you, my dear brothers and sisters.
आप में से सब भाई बहनों के लिए ये वचन है।
This should be a light.
ये आपका हक है।
And if God has given you light in this camp.
अगर प्रभु ने आपको इस विषय में प्रकाश दिया है,
Share it with others.
तो आप ये दूसरों के साथ भाग कीजिए।
Share it particularly with those who are living under this false grace.
और वे लोग जो झूठे कृपा के अधीन हैं, उनको ये बातें बताइए।
This great deception, once saved, always saved.
ये जो झूठा सुसमाचार है कि एक बार आपका उद्धार हो गया, हमेशा के लिए उद्धार है।
It's a lie of the devil.
ये शैतान का एक झूठ है।
We have seen from the scriptures.
हमने पवित्र शास्त्र से कई वचन पढ़े.
That is not true.
ये सच नहीं है.
So we have to help others.
इसलिए हमें दूसरों की मदद करना है.
To bring out prisoners from the dungeon and those who dwell in darkness from the prison.
वो कारागृह में पड़े हुए व्यक्तियों को और जो अंधकार में हैं उनको उधर से बाहर लेके आना है.
And all these ones, I'm talking about believers. I'm not talking about nominal Christians. All these ones who are believers, whom the Holy Spirit is speaking to, like we heard recently in Bangalore from Brother Zach, to the overcomers are those that Jesus is speaking to believers. He's not speaking to nominal Christians. He who has a ear to hear, let him hear what the Spirit is saying to believers.
और ये जो भी कुछ यहाँ बार बार दोहराया जा रहा है, जिसके पास कान है वे सुने. ये किन के विषय में बोला गया? विश्वासियों के विषय में बोला है. जो साधारण ख्रिस्ती है उनके विषय में भी नहीं, जो विश्वासी है उनके लिए.
So you and I have a great responsibility.
इसलिए आपको और मेरे को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है.
Brother Zach's getting older.
भाई जैक बूढ़े हो रहे हैं.
And we are getting older.
मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ.
We'll pass on.
हम निकल जाएंगे.
But you are the ones to carry the light forward.
आप हो जिनके पास ये ज्योति आगे लेके जाना है.
You are the ones who can bring prisoners out of their dungeon.
आप ही हैं जो उस अंधकार में फंसे हुए कारागृह से लोगों को बाहर लेके आ
सकते हैं. You are the ones who can light up the darkness in people's lives.
आप ही हैं जो अंधकार में वो ज्योति जलाकर उनके जीवन को प्रज्वलित कर सकते हैं.
Because if you talk to such people who believe this lie.
अगर जो लोग इस अंधकार और इस झूठ को सच समझते हैं उनको जब आप बोलोगे,
who believe in this false grace,
जो ये झूठे कृपा पर आधार रखते हैं,
who believe that the blood of Jesus is always there to,
उनको हमेशा लगता है कि जो प्रभु का रक्त है हमेशा उनको धोता रहेगा,
who believe that, you know, they treat the blood of Jesus like common tap water.
और वो प्रभु के रक्त को ऐसे करते हैं जैसे साधारण टैप का पानी है, उस प्रकार वो समझते हैं.
You talk to them,
आप उनसे बात कीजिए.
And you will find out where this doctrine has led them to.
और ये आप जब आप बात करोगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो उनका डॉक्ट्रिन है वो कहां उनको लेके गया है.
You find all of them are in this dungeon.
आप देखोगे कि ये सब लोग उस कारागृह में बंदी हैं.
You will find all of them dwell in darkness.
वे सब अंधकार में बैठे हुए हैं.
Whose responsibility it is?
ये किसकी जवाबदारी है?
It's the responsibility of the church.
ये कलीसिया की जवाबदारी है.
Responsibility of the overcomers in the church.
ये जो जयवंत लोग हैं उनकी जवाबदारी है.
May their tribe increase. May their tribe increase.
उनकी जो गणना है वो ज्यादा बढ़े.
May we see more overcomers in our midst.
ताकि जयवंत लोगों का गन्ना और बढ़े.
May we see those who have a ear to hear what the Spirit is saying to believers today.
वे जो आत्मा की वाणी है सुनने के लिए कान वाले लोग, वे ऐसे लोग और बढ़े.
So the Lord goes on to say in Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Behold, the former things have come to pass. Now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you. 42:7-8.
मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है. अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तियों को न दूंगा. देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताऊंगा, उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ.
And to such people God says, sing to the Lord a new song.
और इन लोगों को प्रभु बोलते हैं एक नया गीत गाओ.
Sing his praise from the end of the earth.
उसकी स्तुति पवित्र पृथ्वी के छोरों से करो.
We can truly sing and give thanks and praise to God.
हम सही रीति से ऐसा गाना गा सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं.
God always does something new.
प्रभु हमेशा कुछ नया चीज करता है.
We saw that he repeated that in Isaiah 43 verse 19.
और यही चीज हमने Isaiah के 43 में वापस दोहराते हुए देखा.
Now the Lord says, you know, forget the past. Don't call to mind verse 18 of Isaiah 43. Do not call to mind the former things or ponder things of the past. I will do something new.
अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ.
I'll make a roadway in the desert and rivers roadway in the wilderness and rivers in the desert.
देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी और तुम उसमें अनजान रहोगे. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश पर नदियां बहाऊंगा.
Many of you last night have asked the Lord to do that.
कई लोग आपके बीच में ऐसे हैं जो कल रात को ये मांग रहे थे.
And believe that the rivers have begun to flow if you've removed all the things that hinder it.
और आपके जीवन से वो नदी बहने के लिए आपने मांगा है, अगर आपने जो चीजें आपको रुकावट कर रही है उसको हटा दिया तो.
God is doing a new thing today.
प्रभु एक नई चीज आज कर रहा है.
There are exciting days ahead.
आगे बहुत ही शूरवीर दिन है.
Together with persecution.
कठिनाइयों और persecution के द्वारा.
But we will experience the true grace of God.
परंतु हम उन सबों के बीच में प्रभु की सच्ची कृपा जानेंगे.
We'll experience the power of God.
प्रभु का वो बल हम पाएंगे.
And we will be among those people that God says He will leave, a humble and a lowly people who take refuge. In the name of the Lord.
हम उन लोगों के बीच में बचेंगे जो दीन हैं और जो प्रभु के नाम पर आश्रित हैं.
That is the work of the Holy Spirit.
ये पवित्र आत्मा का एक काम है.
It's not the stale, same old things.
ये वही पुरानी चीज नहीं है जो बदबू देती है.
Something new.
कुछ नया.
His mercies are new every morning.
उसकी जो कृपा है हर रोज नई है.
New every morning.
हर दिन नया है.
And great is His faithfulness.
और उसकी जो विश्वस्तता है वो हमेशा की है.
And the Holy Spirit works in your life and my life to always bring out something new.
पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है ताकि कुछ नया हमारे जीवन में आए.
To make us more like Jesus.
ताकि हम और अधिक प्रभु यीशु के समान बने.
To help us to walk like Jesus when He walked upon this earth.
ताकि हम उसी पथ पर चल पाए जिस पथ पर प्रभु यीशु चले थे.
And that is why we read in 2 Corinthians 5:17, if any man, if any woman is in Christ, he's a new creation. Old things are passed away. New things have come.
इसीलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं कि कोई अगर प्रभु यीशु में आता है तो पुरानी चीजें बीत गई, एक नई चीज शुरू हुई है.
God is in the process of shaking everything on the earth.
प्रभु हर एक चीज जो स्थिर है उसको हिलाने में लगा हुआ है.
Here's another word that has come to us often.
ये एक ऐसा वचन है जो हमको बार बार प्रभु ने बातें की हैं.
In Hebrews chapter 12.
इब्रानियों 12वां अध्याय.
It would be good to pay attention to this word. We referred to it a little bit during this camp.
ये अच्छा है कि हम इस पर ध्यान करें, मनन करें.
And we spoke about pursuing peace with all men.
हमने इस विषय में देखा था कि सब लोगों के साथ शांति बनाए रखने के विषय में.
And the sanctification without which no one will see the Lord.
और वह शुद्धता जिसके बिना हम परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता.
After all those warnings in Hebrews 6 and Hebrews 10.
इब्रानियों 6 और इब्रानियों 10 के जो चेतावनियां हैं वो सब देने के बाद.
I want you to turn a moment to Hebrews chapter 6.
मैं चाहता हूं कि आप वापस इब्रानियों 6वें अध्याय में वापस आएं.
I want to point out certain things there.
मैं वहां कुछ मुख्य चीजें आपको बताना चाहता हूं.
This is what we have the privilege.
ये ही हमारा privilege है. चौथा वचन.
Says that we have been enlightened. Verse 4, in the middle of that word, in case of those who have once been enlightened,
ज्योति पाए हुए, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है,
those who have tasted the heavenly gift,
और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं,
that's what happens when we come to Christ, when we are in Christ.
यही होता है जब हम प्रभु में आते हैं और क्रिस्त में रहते हैं.
We got light.
हम में प्रकाश आता है.
We tasted the heavenly gift.
हम प्रभु का अच्छे स्वर्गीय द्वान को हमने स्वाद किया है.
The Holy Spirit.
वो पवित्र आत्मा जो है.
And it says that we are made partakers of the Holy Spirit.
और हम उसके भागी बन गए हैं उसकी चीजों में, कामों
में. Verse 5, we have tasted the good word of God.
उस वचन के अच्छे वचन को हमने चखा है.
And the powers of the age to come.
और वो शक्ति जो आने वाले दिनों की है.
That is the experience of one who is in Christ.
ये सारी चीजें हैं जो क्रिस्त में आया हुआ व्यक्ति
है. That is the experience of one who is part of this new creation.
ये नए किए हुए व्यक्ति का के जीवन की ये सच्चाई है.
What a great privilege it is.
ये कितना बड़ा एक अधिकार है हमको.
So,
इसलिए
the Holy Spirit says in Hebrews chapter 12.
इसलिए पवित्र आत्मा इस प्रकार इब्रानियों 12 में बोलते हैं.
After he says there to pursue after peace with all men and sanctification without which no one will see the Lord.
वहाँ शांति बनाए रखने और शुद्धता जिसके बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं वो and, बोलते आगे बढ़ते हैं
and listen to this, verse 15.
15वां वचन
See to it that no one comes short of the grace of God.
और ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए.
See to it. That is the responsibility of all of us who have received grace.
ध्यान से देखते रहो ये हमारी जवाबदारी है कि हम ये ध्यान पूर्वक देखें.
It's not just for the elders.
ये केवल मुखिया लोगों के लिए ही नहीं.
Those who have become partakers of the Holy Spirit will receive this true grace.
और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं जिनको ये सच्ची कृपा मिली है.
See to it that no one comes short of the grace of God.
ये ध्यान से देखते रहें कि कोई भी अनुग्रह से वंचित न रह जाए.
And how does that happen?
और ये कैसे होता है?
That no root of bitterness, the rest of the verse, causes trouble and by it many be defiled.
या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट वे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो गए हैं.
And the Holy Spirit reminds us about Esau.
और उसके बाद ईसा के विषय में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता
है. He sold his birthright for a single meal.
उसने एक भोजन के लिए अपना जो बर्थ राइट है वो छोड़ दिया.
For short term gain.
और कुछ समय के भलाई के लिए.
And he says even afterwards when he wanted the blessing he could not receive it even though he repented with tears.
वह बाद में जो आशीष चाहिए था उसके लिए रो रो कर भी उसे वह नहीं मिला.
So none of us should come short of the grace of God.
इसलिए हम में से कोई भी उस कृपा से बाहर नहीं जाना है.
Because
क्योंकि
the Holy Spirit says and
क्योंकि पवित्र आत्मा इस प्रकार बोलता है.
We talked about a little bit about this verse 18.
18वें वचन में इस प्रकार बोला है.
You have not come to a mountain that can be touched and to a blazing fire and to darkness and gloom and whirlwind. And so on, he said. But you have come, verse 22, to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the myriads of angels, to the general assembly, verse 23, and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous of righteous men made perfect.
हम 18 में पढ़ेंगे. तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी ऐसे कई चीजें बोलने के बाद आगे 22 में ऐसे बोला है. पर तुम सियोन के पहाड़ पे के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों का साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिटकाव और उसे लहू से पाए हुए हो जो जलीब के लहू से उत्तम बातें कहता है.
And verse 24, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood which speaks better than the blood of Abel.
24. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव से उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है.
And then we read this
जब हम ये पढ़ते हैं.
See to it. There's those words again. See to it that you do not refuse him who is speaking.
इसलिए हमें सावधान रहना है जैसे अगले वचन में लिखा है जो बातें हमसे कर रहे हैं.
For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from him who warns from heaven.
Shall I read
25?
सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फिरो क्योंकि वे लोग तब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले के मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे.
And it says in verse 26, his voice shook the earth then, but now he has promised saying, yet once more I will shake not only the earth but also the heaven.
उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर से केवल पृथ्वी ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा.
This expression, verse 27.
ये जो शब्द लिखा है 27 में.
Follow these verses in your Bibles. They're so important.
ये आप ध्यान पूर्वक पीछे पीछे पढ़ें जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं. ध्यान दें.
You'll lose what God is saying. I hope you have a Bible.
आपके हाथ में एक Bible है मैं विश्वास करता हूँ और जैसे पढ़ रहे हैं वो ध्यान पूर्वक आप देखें.
God says.
प्रभु इस प्रकार बोलते हैं.
Through His Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा.
Yet once more.
एक और बार
denotes the removing of those things which can be shaken as of created things so that those things which cannot be shaken may remain.
और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे.
All that is of man will be shaken.
हर एक चीज जो मनुष्य की है वे सब हिल जाएंगे.
We are living in those times.
हम उस काल में हैं आज.
The shaking has begun.
वो हिलाना शुरू हो चुका है.
And what is it that will not be shaken?
और वह क्या चीज है वो जो कभी हिलेगा नहीं?
That which is not created by man.
वह चीज जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है.
That which is of the new creation.
वह जो चीज है जो नया बना हुआ है.
And we saw that what it means to be part of the new creation.
हमने देखा वह नए क्रिया के साथ रहना उसका मतलब क्या है.
And it says in verse 28, therefore since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service. With reverence and awe for our God is a consuming fire.
इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह के हाथों से न जाने दे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर को ऐसे आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है.
My dear brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाई और बहनों,
make sure that you're part of this kingdom that cannot be shaken.
आप ये निश्चय करें कि आप उस राज्य के रहोगे जो हिलता नहीं है.
That kingdom which cannot be shaken is within the church.
और वह राज्य जिसको हिला नहीं सकता है वो कलीसिया के अंदर है.
That kingdom which cannot be shaken is the church within the church.
वह राज्य जो हिल नहीं सकता है वो राज्य कलीसिया के अंदर एक छोटी कलीसिया है.
Do you want to survive that shaking?
क्या वह जो हिलाना है उसमें से आप बचना चाहते हो?
Get rid of all that is of man in your life.
मनुष्य के द्वारा रची हुई चीजों को आप छोड़ दीजिए.
Take refuge in the name of the Lord.
प्रभु के नाम पर आप आश्रित रहिए.
God will take care of everything else.
प्रभु बाकी सारी चीजें संभालेगा.
Seek His kingdom and His righteousness. Everything else will be added to you.
उसके राज्य और उसके नीतिमत्व के पीछे आप खोजी रहो तो प्रभु बाकी सारी चीजें आपको देगा.
And show gratitude.
और धन्यवादी हृदय के साथ रहो.
It says we have to overflow with gratitude.
वहां लिखा है कि हमारा हृदय उमड़ कर भर कर धन्यवाद से भरना है.
One very clear mark of those who are really living under the new covenant is gratitude.
एक अच्छा चिन्ह नए करार में जीने वाले लोगों का है कि उनके हृदय में हमेशा धन्यवाद भरा हुआ है.
We've had people in Bangalore who sat for years in the church who received so much help from the church even materially but who went away with ingratitude.
Bangalore kalisya mein kai saalon tak rehkar kalisya se kai acche cheeze paaye hain sharirik cheeze bhi paaye hain wo sab milne ke baad bhi ve chale gaye chhod kar aur wo unke hriday mein ek dhanyawad ka hriday nahi tha.
We always said to people go away. You think you'll be happy. You don't have to be in CFC.
हमने कईयों को ऐसे बोला है आपको CFC में रहने की जरूरत नहीं है आपको जहां आपको अच्छा लगता है वहां आप जा सकते हो.
Some have gratitude.
कुछ लोगों को वो धन्यवादी हृदय है.
And they decide to go.
और वो निश्चय करते हैं कि.
But most others are ungrateful.
They decide to stay back.
Most others who go
Okay.
Of this number who have gone, some, very few, have gratitude, but most others have gone away with ingratitude.
Yes. ये जो झुंड है जो छोड़ के गए हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर एक धन्यवादी हृदय है और बाकी जो मुख्य लोग हैं उन सबों में एक धन्यवाद का हृदय नहीं है.
How did that happen?
ये कैसे हुआ?
It's like children in a home.
ये एक घर में बच्चों के समान
है. They are so thankful and grateful to their parents. They'll never lose that. When they go away and leave the home, they're always thankful and grateful to the parents.
वो बच्चे जब घर में पले बढ़कर बड़े होके निकल जाते हैं वो हमेशा धन्यवादी रहते हैं अपने घर के विषय में.
It's not that is the right thing to do.
ये हर बार सच होगा ऐसा नहीं है.
No, they have drunk a spirit of gratitude in the home.
उन्होंने ये जो धन्यवाद का जो वो है उन्होंने पिया है.
They see mother and father who are grateful.
उन्होंने अपने माता और पिता को देखा है जो धन्यवादी खुद है.
Grateful to God.
प्रभु को धन्यवाद
देते हैं.
एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते हैं.
एंड इवन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, इवन टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन.
और उनके बच्चों के विषय में भी वे धन्यवादी हैं.
So when they go out, they are grateful.
इसलिए जब वो घर छोड़ के जाते हैं,
that's what happens with those who sit in the church.
छोड़ के जाते हैं तब भी वो धन्यवादी हैं.
ऐसा ही. Find fault with the elders.
और जो लोग ऐसे कलीसिया छोड़ के जाते हैं वे नबियों के बारे में बुरा बोलते हैं और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं.
बिजी बॉडीज.
और दूसरों के कामों में वो उलझन डालते हैं.
They can't mind their own business.
वो अपने कामों में नहीं व्यस्त रहते.
Always curious.
और हमेशा सोचते हैं दूसरों के बारे में.
Who's getting the next baby?
अगला कौन सा बच्चा पैदा हो रहा
Who's
है?
Getting married next?
कौन अगला शादी करने वाला
all
है?
The time they spend.
और वो इसी कामों में उलझे हुए रहते हैं.
Oh, they're talking about all the vain things.
और ऐसे बेकार की चीजों में वो समय व्यर्थ करते हैं.
So naturally, when they get offended and they leave the church,
और ऐसे लोग जब वो निराश होकर कलीसिया छोड़ के जाते हैं,
they carry that spirit with them.
और वो उनको वो आत्मा लेके जाते हैं.
I want to say to you, my dear brothers and sisters.
इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों.
Take it seriously.
ये आप ध्यान पूर्वक गर्व से ले.
Grateful to God.
प्रभु के साथ धन्यवादी रहो.
Grateful for the hand that feeds you.
जो हाथों ने आपको खिलाया है उसके लिए धन्यवादी रहो.
Grateful that God has given you shepherds after His own heart.
ये धन्यवाद करो कि प्रभु के हृदय के अनुसार आपको मेड़पाल दिए हैं.
Grateful to one another.
एक दूसरे के लिए धन्यवादी रहो.
And it says that let us show gratitude.
हमें एक दूसरों को धन्यवाद जताना है.
Then God will do what He has promised.
तो प्रभु वो कार्य करेगा जो वो उसने वायदा किया
है. He will do a new thing.
वो एक नई चीज करेगा.
He will not even want to look back to the former things.
आपको पीछे भी मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है.
Because this is what He does.
यही करने वाला है प्रभु.
And I close with this word.
मैं इस वचन से रुकना चाहता हूँ.
In Revelation in chapter 21.
प्रगटीकरण 21.
We saw in Hebrews 6 we taste the powers of the age to come.
हमने इब्रानियों में पढ़ा जो आने वाले दिनों की शक्ति है वो हमने चखा है.
You read that word?
हमने वो वचन पढ़ा था.
Those who have tasted the powers of the age to come.
आने वाले दिनों का जो शक्ति उन्होंने चखा है.
Here it is described very aptly.
वहाँ यहाँ सही रीति से उसके विषय में बोला गया है.
He says there, John, this is John's. I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away. And there's no longer any sea. Revelation 21.
फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा.
And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband.
फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो.
And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them, and he will wipe away every tear from their eyes.
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द पर यह कहते हुए सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है. वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा.
And there will no longer be any death, middle of verse 4, there will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away.
और वह उनकी आंखों में से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगा, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रही।
And I ask God to burn this into your spirit.
मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपकी आत्माओं में ये चीज जला डाले।
Verse 5.
पांचवा वचन।
And that's what I ask him to do in my spirit.
मैं यही चाहता हूं कि मेरी आत्मा में भी प्रभु यही कार्य करे।
He who sits on the throne.
वह जो सिंहासन पर बैठा है।
Says, Behold, I'm making all things new.
मैं सब कुछ नया कर देता हूं।
Notice there.
वहां देखिए।
That God doesn't say, Behold, I will make all things new.
वहां ऐसा नहीं बोला कि मैं आगे जाके करूंगा।
I am making all things new.
मैं नई चीज कर रहा हूं।
Now.
अभी।
Right now.
अभी।
I hope there was a beginning in this camp.
मैं विश्वास करता हूं इस कैंप में कुछ एक नया शुरुआत हुआ है।
God says to you, I'm making all things new in your life.
प्रभु बोल रहे हैं आपके जीवन में एक नया चीज कर रहा है।
And in case you have any doubt,
अगर आपको कोई शंका अभी भी है,
the Holy Spirit says, God says,
परमेश्वर और पवित्र आत्मा ऐसे बोलते हैं,
write this down.
आप आपके पुस्तक में लिख सकते हैं.
Write it down. Ask God to write it in your heart.
आप आपके पुस्तक में लिखिए और परमेश्वर बोलिए आपके हृदय में ये चीज़
write what down. I am making all things new.
मैं सारी चीजें नई नया कर रहा हूँ.
For these words are faithful and true.
क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य हैं.
And he said to me.
और उसने मुझसे कहा.
It is done.
यह पूरा हो गया.
Praise God for that.
परमेश्वर की महिमा।
I hope you can say it is done.
मैं विश्वास करता हूं कि आप भी ये बोल सकते हैं कि ये हो गया।
I am the Alpha and Omega, says God.
मैं अल्फा और ओमेगा हूं।
The beginning and the end.
मैं शुरुआत और अंत हूं।
I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. Verse 6, brother.
मैं प्यासे के जीवन में जल के सोता से सेत में पिलाऊंगा।
And You read it? Verse 6.
Yes, ma'am.
I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost, and that was not just yesterday, last night, or in this camp. That will be from now.
वो केवल कल रात को जिन्होंने मांगा उनका ही नहीं और उसी दिन का नहीं परंतु हमेशा के लिए है।
The water of life.
वो जीवन का पानी।
That you'll never thirst again.
ताकि आप कभी भी प्यासे नहीं हो।
Life.
वो जीवन
life abundantly
वो जीवन जो अधिकाई में है
and that's what God says
यही प्रभु हमसे बोल रहा है
I am making all things new in your life
मैं सब कुछ नई रीति में आपके बीच में कर रहा हूं
it's beginning now
ये शुरुआत हुई
है don't have to look back
आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं
write this down
ये लिख लीजिए
write it in your bible to remind you
आपके बाइबल में ये लिख दीजिए ताकि आपको याद आए
more than that let the spirit of God write it In your spirit,
उससे बढ़कर
on your heart.
आत्मा आपके हृदयों में लिख दे
And God says there, verse 7.
और सातवें वचन में,
He who overcomes or she who overcomes will inherit these things. I will be his God, and he will be my son or she will be my daughter.
जो जय पाए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र पुत्री होगा।
And as the Holy Spirit says, let him, let her who has ears to hear, hear what the Spirit is saying to the church.
और पवित्र आत्मा जो आपसे बात कर रहा है, जिसके पास कान हो, वह सुने जो सुनना चाहता है।
Behold, I make all things new.
देखो, मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ।
I believe God wants to do that for us as a church. God wants to do that in your personal lives. God wants to do that in your family life.
प्रभु कलीसिया के रूप में कुछ नया करना चाहता है, आपके जीवन में व्यक्तिगत जीवन में काम करना चाहता है, आपके पारिवारिक जीवन में काम करना चाहता है।
Amen to that.
कृपा करके आमीन बोले।
All those who say Amen, aloud Amen.
वो सब लोग जो आमीन बोल सकते हैं।
Confess it. Confess. You are going to make all things new, Lord, in my life.
और आप मेरे जीवन में सारी चीजें नया करने वाले हैं। वो आप बोलिए, confess कीजिए।
And let the Spirit of God write it on your heart.
और पवित्र आत्मा ये चीजें आपके हृदय में लिख दे।
You will know it, you will experience it.
आप वो जानोगे और आप वो देखोगे.
Whatever troubles, whatever difficulties, whatever persecutions.
आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, दुख है, persecution आएंगे.
We have heard about the true grace of God.
हमने वो सच्चे कृपा के विषय में सुना.
We can stand firm in it.
हम उसमें दृढ़ होकर रहेंगे.
Let's bow our heads and give thanks to God.
हम हमारे सर झुकाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे.
Take a few moments.
कुछ समय हम लेंगे.
To think on what God is saying to you.
हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं.
The Holy Spirit is saying to you.
जो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं.
And say to Jesus.
और यीशु से बोलिए.
Write these things on my heart.
प्रभु इन चीजों को मेरे हृदय में लिख दीजिए.
Remind me of them.
प्रभु इन चीजों को आप मुझे याद दिलाइए.
I thank you.
हम धन्यवाद देते हैं.
I believe.
मैं विश्वास करता हूँ.
That you begun to make all things new.
कि आपने हर एक चीज को नया करने का आपने शुरुआत किया है.
You have made many things new in my life.
आपने कई चीजें मेरे जीवन में नया किया है.
But now I am trusting you to make all things new.
मैं विश्वास करता हूँ कि अब आप सारी चीजें नया करोगे.
My attitude.
मेरा जो स्वभाव है.
My thoughts.
मेरे सोच है.
My actions,
मेरे जो क्रिया है.
My words,
मेरे जो वचन है.
My words especially, Lord,
मेरे वचन विशेष करके.
Make it new,
उसे नया कीजिए.
That grace flow from my lips,
ताकि मेरे मुंह से कृपा बाहर निकले.
Lord, this is where I leak out.
प्रभु ये एक जगह है जहाँ से मेरी सारी शक्ति निकल जाती है.
I am conscious of this.
ये इसके बारे में मैं जागरूक हूँ.
It's through my mouth.
मेरे मुंह के द्वारा ही सब निकल जाता है.
So I cry to you.
इसलिए मैं रोता हूँ आपके सामने.
Set a watch, O Lord, over my mouth.
प्रभु मेरे मुंह पर आप एक देख रेख कीजिए.
Keep the door of my lips.
मेरे जो जबान का दरवाजा है उसे बंद कर.
Like you, let grace only flow from my lips.
प्रभु आपके मुंह से जैसे कृपा बहता था वैसे ही मेरे मुंह से गिरे.
And when I fail there, help me to repent.
और जब मैं वहां गिर जाता हूँ मुझे पश्चाताप करने के लिए मुझे मदद कीजिए.
And get up again.
ताकि मैं वापस खड़ा होके मैं वापस आऊं.
And walk on.
ताकि मैं आगे बढ़ूं.
Thank you, Lord.
धन्यवाद प्रभु.
Thank you for your word.
आपके वचन के लिए धन्यवाद.
Thank you for your Holy Spirit.
आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद.
I want to be grateful.
मैं धन्यवादित होना चाहता
हूं. I want my heart to overflow with gratitude.
प्रभु तेरे धन्यवाद से साथ मेरा हृदय उमड़ना चाहता
हूं. Everything. For everything.
हर एक चीज के लिए.
My brothers and sisters.
मेरे भाई और बहनों.
For my family.
मेरे परिवार के लिए.
For my elders,
मेरे मुखियाओं लोगों के लिए.
I want to come under authority.
मैं उनके अधीन रहना चाहता हूँ.
I want to submit to them.
मैं उनके अधीन रहना चाहता हूँ.
Because you placed them over me.
क्योंकि आपने उनको मेरे ऊपर रखा है.
So I commit myself to you.
इसलिए मैं अपने आप को उनके आपके सामने डालता हूँ.
Surrender my life afresh to you.
मैं अपने आप को अर्पित करता हूँ नई रीति से.
I want you to be glorified in me, Lord.
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में महिमा पाए.
So I can offer my body up to you.
इसलिए मैं मेरे शरीर को आपके सामने अर्पित करता हूँ.
As a living sacrifice.
एक जीवित अर्पण के समान.
And enter into true worship.
और सही आराधना में मैं आ सकूँ.
And I can be gathered together with the remnant of your people.
ताकि मैं उन छोटे बचे हुए लोगों के साथ मैं हमेशा के लिए रह सकूँ.
Thank you. You will do this.
मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप ये करोगे.
Because I ask in your name, in Jesus' name.
मैं आपके नाम पे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में.